प्रश्न प्रथम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया इस्कॉन जयपुर में दिनांक 29/4/2014।
श्रीचैतन्यामनवैस्तावितामेन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति जय श्रीकृष्ण चै प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो कुछ ही दिनों में 2 तारीख से हम भगवान को चंदन लगाएंगे। कितने दिनों के लिए? 3 हफ्ते के लिए। इसे कहा जाता है चंदन यात्रा। वृंदावन में कई मंदिर, हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में भगवान को सिर्फ चंदन से ढका जाएगा। तो मैं सोचा था आपको चंदन यात्रा की कथा सुनाए, सुनना चाहते हो। राज एक गदाधर पंडित का आविर्भाव तिथि भी है। चैतन्य महाप्रभु जी को कहा जाता है सब अवतारों में सबसे दयालु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसार है। पतित पवन हेतु थव अवतारा मोह सम पतित प्रभु ना पाए बिहारा। नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ था बड़े रईस खानदान में। उनके पिता राजा थे पर उन्होंने हर प्रकार का भौतिक सुख त्यागा। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन के 6 गोस्वामियों में एक हैं और वो उस समय के करोड़पति पिता के इकलौते पुत्र थे। पर उन्होंने सारा सुख त्यागा भगवान की भक्ति करने के लिए। तो उसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर ने सब कुछ त्यागा और उन्होंने अनेक प्रार्थना लिखी। और प्रभुपाद जी ने कहा है नरोत्तम दास ठाकुर की रचना में और व्यासदेव की रचना में कोई अंतर नहीं। तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु सब अवतारों में सबसे दयालु हैं। और महाप्रभु प्रकट हुए किस लिए? पतितों के उद्धार। हम पतित हैं या नहीं? हम कहेंगे हम तो राजस्थान में जन्म लिया है, हम पति थोड़ी होंगे। यहाँ तो हम सब इस कलयुग में पतित हैं। हाँ, कलौ शूद्र संभव। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। भगवान अलग अलग समय में प्रकट होते हैं। यदा यदा ही धर्म से ज्ञानी भवति भारत विधर्म धर्म से तदात्मनम सृजामि अहम्। भगवान कहते हैं मैं अलग अलग समय में प्रकट होता हूँ। किस लिए? धर्म के नियमों की स्थापना के लिए। पर जब भगवान प्रकट होते हैं वो अकेले प्रकट नहीं होते, वो प्रकट होते हैं अपने साथियों के साथ। जैसे जब भगवान कृष्ण आए वो भी आए साथियों के साथ, बालराम नंद महाराज यशोदा माता वासुदेव देवकी। भगवान राम आए वो भी अपने साथियों के साथ आए। तो चैतन्य महाप्रभु भी साथियों के साथ आए। हम कहते हैं पंचतत्व। चैतन्य महाप्रभु उनके 4 साथी। भगवान नित्यानंद, नित्यानंद का अर्थ है जिसकी शरण लेकर अब केवल आनंद ही आनंद अनुभव करो। नित्य आनंद, आनंद का अर्थ क्या है? तो भगवान नित्यानंद कौन है? बलराम जी के अवतार, लक्ष्मण जी के अवतार। तो भगवान नित्यानंद भी भगवान है। फिर अद्वैत आचार्य, उन्हें महाविष्णु का अवतार माना जाता है। अद्वैत आचार्य की उम्र लगभग चैतन्य महाप्रभु जी के पिता की उम्र के बराबर थे, पर अद्वैत आचार्य को महाविष्णु का अवतार कहा जाता है। और अद्वैत आचार्य महाप्रभु से पहले प्रकट हो चुके थे। अद्वैत आचार्य, इसलिए आप अद्वैत आचार्य की फोटो देखते हो दाढ़ी के साथ, पंचतत्व में दाढ़ी से अद्वैत आचार्य की है, क्योंकि उम्र में वो सबसे ज्यादा थे। तो चैतन्य हरि अद्वैत आचार्य जब प्रकट हुए, और अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर दिन रात भागवत का अध्ययन करते थे, हरि नाम का उच्चारण। समाज की स्थिति को देखते हुए दोनों ने प्रार्थना की, हे भगवान, आप स्वयं प्रकट हो तो ही इन व्यक्तियों का उद्धार होगा। और अद्वैत आचार्य हमेशा महाप्रभु को बड़ा आदर देते थे। वो उन्हें पता था महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान। पर महाप्रभु जानते थे कि अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं। तो महाप्रभु अद्वैत आचार्य को बहुत आदर देते थे। तो अद्वैत आचार्य को अच्छा नहीं लगा कि उन्हें इतना आदर दिया जा रहा है, जबकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं। तो अद्वैत आचार्य ने क्या किया, उन्होंने मायावादी सिद्धांत का प्रचार शुरू कर दिया कि भगवान का रूप नहीं है, तुम भगवान, हम भगवान, हम सब भगवान। तो ये सूचना महाप्रभु तक पहुंच गई कि अद्वैत आचार्य तो मायावादी बन गया, मायावादी सिद्धांत का प्रचार कर रहा है। भगवान ने नित्यानंद से पूछा, क्या तुमने भी सुना है कि अद्वैत आचार्य मायावादी बन गया है? नित्यानंद ने कहा, हाँ मैंने भी सुना है। महाप्रभु बड़े गुस्से हुए, उन्होंने अपने पैर से उनकी छाती को मारा। जब छाती को मारा था, अद्वैत आचार्य ने कहा, थैंक यू वेरी मच, मैं यही चाहता था, आप मुझे इतना आदर दे रहे थे, मैं चाहता था तो आप मुझे डांटो। ये नाटक कर रहे थे कि महाप्रभु उन्हें डांटे। तो अद्वैत आचार्य स्वयं महाविष्णु हैं। फिर श्रीवास, श्रीवास को माना जाता है किनका अवतार? नारद मुनि का अवतार। और फिर गदाधर पंडित, गदाधर पंडित को माना जाता है राधा रानी जी का अवतार। जिस प्रकार राधा रानी के मन में हमेशा एक ही भाव था, जो कम भी बुद्धि के व्यक्ति हैं वो राधा रानी को नहीं समझ पाते, राधा रानी के मन में एक ही भाव था, कृष्ण की सेवा। दिन रात जब राधा रानी ने अपने पहले नेत्र खोले, कृष्ण ही नजर आए। तो राधा रानी जी प्रकट हुए पंच चैतन्य महाप्रभु की लीला के समय गदाधर पंडित के रूप में। और गदाधर पंडित महाप्रभु से 1 साल छोटे थे आयु में, और दोनों पढ़े थे गंगादास पंडित के आश्रम में। महाप्रभु भी जब छोटे थे तो महाप्रभु ने भी गुरु स्वीकार किया ईश्वरपुरी, पर गंगादास पंडित के अध्यापक थे और महाप्रभु उनसे सीखे, और गदाधर पंडित उनके साथ हैं। गदाधर पंडित रोज महाप्रभु के लिए हार बनाते थे, और महाप्रभु से 1 पल के लिए भी जुदा नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था, उन्होंने ये भाव रखा था कि मैंने 1 रात भी जगन्नाथपुरी के बाहर नहीं काटना। इसको कहते हैं क्षेत्र संन्यास। पर जो महाप्रभु संन्यास लेकर आए थे तो उनके साथ आए। तो गदाधर पंडित के मन में सदा एक ही भाव था, उनकी सेवा। और वो हमेशा महाप्रभु के साथ रहते थे। और गिरधर पंडित जब महाप्रभु प्रकट हो गए थे तो गिरधर पंडित बड़े उदास थे, और फिर और जगन्नाथपुरी की एक मूर्ति है टोटा गोपीनाथ की, तो गिरधर पंडित रोज हार बनाते थे गिरधर टोटा गोपीनाथ के। जब वो बूढ़े हो गए थे, खास करके जब महाप्रभु का प्रकट हुए, तो अत्यंत दुखी थे, तो वो हार नहीं चढ़ा सकते थे। तो भगवान ने क्या किया, भगवान बैठ गए छोटे गोपीनाथ की जो मूर्ति है, एक ही मूर्ति है इस पृथ्वी पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, खड़े नहीं हैं। अब गए हो छोटे गोपीनाथ के मंदिर में, भगवान बैठे हुए हैं ना। क्यों भगवान बैठे हुए हैं, क्योंकि गदाधर पंडित जब बूढ़े हो गए थे, क्योंकि महाप्रभु प्रकट हो गए थे तो अत्यंत दुखी थे, तो गदाधर पंडित हार चढ़ा नहीं सकते थे। तो भगवान ने कहा मैं बैठ जाऊंगा तो तुम ऐसा नहीं से हार चढ़ा दोगे। तो फिर महाप्रभु तो थोदर गोपीनाथ की मूर्ति में भगवान भी प्रकट हुए थे। तो आज गदाधर पंडित का आविर्भाव तिथि है, हमें गदाधर पंडित से प्रार्थना करनी चाहिए क्या कि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो कि हम भक्ति में आगे बढ़ें। जैसे कहते हैं जय राधे, राधा रानी जी की कृपा से ही कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो गदाधर पंडित और पंचतत्व चैतन्य महाप्रभु के सनातन साथी हैं, और आज है गदाधर पंडित का आविर्भाव तिथि। तो थोड़े दिनों में आप चंदन यात्रा उत्सव मनाओगे। चैतन्य महाप्रभु जी हालांकि भगवान थे, उन्होंने भी गुरु स्वीकार किया जिनका नाम था ईश्वरपुरी, ने भी गुरु स्वीकार किया जिनका नाम था। तो माधवेंद्रपुरी बहुत ही ऊंची कोटि के भक्त थे, उनके मन में सदा एक ही भाव था कृष्ण की सेवा, दिन रात भगवान के नामों का उच्चारण करते थे। और उनका ये नियम था अगर किसी ने कुछ भोजन दे दिया खाने को तो खाते थे, और किसी ने भोजन नहीं दिया तो भूखे रहते थे। आपका भी यही सिद्धांत है, आपका सिद्धांत है हमको प्रसाद जरूर चाहिए तीन बार दिन में। तो और माधवेंद्रपुरी दिन रात भगवान का नाम लेते थे। तो एक दिन माधवेंद्रपुरी ने अपने गोवर्धन की परिक्रमा समाप्त की। आप ऐसे कितने भक्तों ने गोवर्धन परिक्रमा किया है, और सब ले। तो जब गोवर्धन परिक्रमा करते हो तो आप गोविंद कुंड में रुकते हो, वहां लोग कहते हैं ये माधवेंद्रपुरी की बैठक है। तो माधवेंद्रपुरी ने गोवर्धन परिक्रम, वो गोवर्धन परिक्रम रोज करते थे। सनातन गोस्वामी भी गोवर्धन परिक्रम रोज करते थे। गोवर्धन परिक्रम समाप्त करके वो बैठक में थोड़ा विश्राम कर रहे थे कि एक बहुत खूबसूरत ग्वाला वहां आया, इतना खूबसूरत क्या आप उसके अंदाजा भी नहीं कर सकते। उस ग्वाले ने दूध में मटका लाया था, मटके में दूध लाया था। ग्वाले ने कहा हे संत महात्मा, तुम भूखे नजर आते हो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूं, दूध पी लो और मैं जा रहा हूं गायों से दूध निकालने के लिए, और मैं लौट कर ये मटका ले लूंगा। माधवेंद्रपुरी आश्चर्य हो गए थे, भूख तो लगी थी पर वो आश्चर्य हो गए थे, ये ग्वाला को ग्वाले को कैसे पता कि मैं भूखा था। तो उन्होंने पूछा आपको कैसे पता लगा कि मैं भूखा था। ग्वाले ने कहा मेरे गांव की औरतें कुएं में जानी थी पानी निकालने के लिए, पर आपके चेहरे को देखकर पहचान गए कि आप भूखे हो, और मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रह सकता, तो आप ये दूध पियो और मैं लौटता हूँ मटका लेने के लिए। माधव पुरी ने बहुत राह देखी इस बालक की, और बालक लौटा ही नहीं। वह इतने में उनको हल्की सी नींद आ गई। जब नींद आ गई तो वही ग्वाला सपने में आया। कौन सा ग्वाला? इसने दूध दिया था। वही ग्वाला सपने में आया और कहने लगा, माधव ने पूरी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूं। मैं यही देख रहा हूं कब माधवपुरी मेरी सेवा बढ़ाएगा। मुझे मुसलमानों के अत्याचार से बचाने के लिए पुजारियों ने छुपा दिया है पृथ्वी के नीचे। ये जो विग्रह है, यही विग्रह आज कहाँ है? न द्वारा में, आपके जयपुर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो भगवान ने कहा कि मेरे विग्रह को दूर नीचे छुपाया हुआ है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है वहाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी स्थापना करो। जब माधव पुरी को ये सपना आया, वो शर्मिंदा हो गए, पछताने लगे। क्यों? उन्हें सपने में पता लगा कि वो जो ग्वाला जिसने दूध ला के दिया था, वो स्वयं भगवान थे, कृष्ण भगवान। तो माधव पुरी के मन में ये दुख था, मैंने भगवान से सेवा ले ली। आप समझे हो, उनके उन्होंने भगवान के हाथों से मटका ले लिया, मटके में दूध था। तो माधव पुरी के मन में शोक था, दुख था, मैंने भगवान से सेवा ले ली। जो भक्त की भाव क्या होना चाहिए? हम भगवान की सेवा करें। अक्सर लोग सोचते हैं गॉड शुड बी आवर ऑर्डर सप्लायर, मतलब कि जो जो भौतिक इच्छाएं हैं भगवान को पूरी करनी चाहिए, और अगर नहीं पूरी होती तो भगवान में हमारे विश्वास छूट जाएगा। हम भूल जाते हैं हम सब का कर्मों का इतिहास है। कई बार लोग पूछते हैं, ये बच्चा तो अभी पैदा ही हुआ था, तो इसने तो कोई पाप किया भी नहीं, तो वो अंधा क्यों पैदा हुआ, बहरा क्यों पैदा हुआ, ये कमजोरी क्यों? तो उनको समझे, उन्हें ये नहीं पता आत्मा सनातन है। हमारा जो कर्मों का डेबिट क्रेडिट चल रहा है, ये चल रहा है अनेक जीवनों से। ये नहीं कि आप इस जीवन में नया अकाउंट खोलोगे और पुराने जीवन का अकाउंट कैंसिल हो गया। ये आत्मा सनातन है। तो वो ऊंची स्थिति में, ऐसे तो भगवान कहते हैं गीता के सातवें अध्याय में, चातर पिता बजानते माम, कहते हैं ना, चार परिस्थितियों में लोग मेरी शरण में आते हैं। कौन है चार श्रेणी के व्यक्ति? एक, जैसे धन चाहिए, आप भक्तों को धन शायद नहीं चाहिए, चाहिए भगवान की धन। दूसरा, जो रोगी है पीड़ित है। तीसरा, जो जिज्ञासु है। चौथा, ज्ञान के आधार पर मेरी शरण में आता है। चार के चार पुण्य आत्मा हैं, क्योंकि कम से कम वो मेरी शरण में तो आ रहे हैं। पर इन चारों में सबसे श्रेष्ठ वो है जो कि ज्ञान पर आधारित मेरे पास आता है। तो माधवेंद्र पुरी को जब पता लगा कि उसने भगवान के हाथों से दूध ले लिया है, तो बड़े शर्मिंदा हो गए। और ये मूर्ति, ये जो मूर्ति है, इसकी स्थापना हुई थी ब्रज के द्वारा जो 5,000 साल पूर्व, और 5-600 साल पहले उत्तर भारत में मुसलमानों का शासन चल रहा था, और जब मुसलमानों का शासन चल रहा था तो कई प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया था। तो पुजारियों ने क्या किया, पुजारियों ने या तो मूर्तियों को छुपा दिया पृथ्वी के नीचे और ऊपर से ढक दिया कि कोई देख नहीं सके, या मूर्तियों को उठाकर वो जयपुर में ले आए। इसलिए आपके जयपुर का एक और नाम है गुप्त वृंदावन, जयपुर धाम है, इसका दूसरा नाम है गुप्त वृंदावन, क्योंकि हमारे आचार्यों की इतनी प्रसिद्ध मूर्तियां हैं, राधा दामोदर, राधा गोविंद जी, जो कि हैं कहाँ, आपके जयपुर। और जयपुर में ये संभव हुआ था क्योंकि उस समय जयपुर में हिंदू राजा था। तो माधवेंद्र पुरी को भगवान ने सपने में कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी स्थापना करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो माधवेंद्र पुरी ने अगले दिन सुबह सब ब्रिजवासियों को निमंत्रण दिया और अपने सपने का वर्णन किया। सपने में भगवान ने यह कहा था, कहाँ मुझे दबाया हुआ है, कहाँ मुझे छुपाया हुआ है। तो सब ब्रिजवासियों ने निर्णय कर लिया, चलो सुबह जाते हैं, डोर खोद कर देखते हैं क्या उसी स्थान में भगवान हैं जो कि सपने में कहा था, किसे, माधवेंद्रपुरी को। तो सब कैंची वैंची लेकर गए, पहले झाड़ियों को काटा, झाड़ियों को काटने के बाद खोदा उसी स्थान जिसका सपने में वर्णन था, और जब खोदा 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 तो क्या मिला, भगवान का विग्रह। जब वो विग्रह मिला तो माधवपुरी ने सब भक्तों का सहयोग लेकर दो दिनों में उनकी स्थापना कर दी। हम लोग जब मूर्ति स्थापना करते हैं इस्कॉन में, हमें दो दो साल लग जाते हैं तैयारी करने में, पर माधवपुरी ने दो दिन में सारी तैयारी कर दी। एक बड़े पत्थर को लेकर उसका सिंहासन बना दिया, सारे जो ब्रिजवासी थे सबको सेवा में जोड़ा। सब ब्रिजवासियों ने, किसी ने गाय दान में दी, किसी ने खेती दान में दी। वो थोड़े दिनों में ही गोपाल विग्रह सबसे धनी जमींदार बन गए, क्योंकि सारी संपत्ति किसकी है, भगवान की। जब प्रभुपाद जी ने लंदन में राधा कृष्ण मूर्तियों की स्थापना की तो प्रभुपाद जी ने इन राधा कृष्ण मूर्तियों को क्या नाम दिया, श्री श्री लंदन ईश्वरा, लंदन शहर के स्वामी। जब पेरिस में की प्रभुपाद जी ने कहा श्री श्री पेरिस ईश्वरा। तो आपके यहाँ कृष्ण बालराम है, उनको आप ये भी कह सकते श्री श्री जयपुर ईश्वर, या पूरा राजस्थान का। तो दो दिनों में भगवान की स्थापना हो गई, और सारे जो ब्रिजवासी थे, किसने खेती दान में दी, किसने गाय दान में दी, नंद महाराज जो पृथ्वी पर थे उनके पास 9 लाख गायें थी। प्राचीन समय में हमारी संपत्ति या समाज की स्थिति मापी जाती थी ये देखकर कितनी जमीन है, कितने गाय हैं। गाय है हमारी माता, 7 माताओं में एक माता कौन सी है, गाय की सुरक्षा समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जिस समाज में गाय की सुरक्षा नहीं हो वो समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, और हमें शर्म आती है ये देखते हुए कि हमारा भारत देश, जहाँ की गायों की सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व में बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया, और ये बड़े खुश हैं कि हम इतना एक्सपोर्ट करते हैं। गाय की सुरक्षा होनी चाहिए, गाय माता है, गाय दूध देती है और बदले में क्या लेती है, केवल घास, सबसे निर्दोष पशु है। तो दो दिन में गोपाल का स्थापना हो गई और भगवान ने और दो बंगाली ब्राह्मण आए थे उनको माधवनपुरी ने जिम्मेदारी दे दी ठाकुर जी की सेवा की। और माधवनपुरी सारा दिन भगवान की सेवा करते थे, रात को जब भगवान सो जाते थे उसके पश्चात थोड़ा सा दूध पीते थे, बस सारा दिन नथिंग कुछ नहीं खाते थे। जब भगवान सोच भगवान की सेवा समाप्त होती थी उसके पश्चात थोड़ा सा दूध पीते थे बस। तो दो साल बाद माधवनपुरी को फिर से एक सपना आया। उस सपने में भगवान ने कहा मैं तुम्हारा भारी हूं कि तुमने मेरी स्थापना कर दी है, पर मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, तो मेरे लिए चंदन लेकर आओ। चंदन से आपने देखा होगा, चंदन हम केवल गर्मी के मौसम में लगाते हैं, सर्दी में नहीं लगाते हैं भगवान को। चंदन से शरीर ठंडा हो जाता है। तो भगवान ने कहा मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, मेरे लिए चंदन लेकर आओ। तो माधवनपुरी ने भगवान की देखभाल की जिम्मेदारी दो ब्राह्मणों को दी। दो बंगाली भक्त आए थे जिनको उन्होंने ब्राह्मण दीक्षा दे दी। और फिर माधवनपुरी चले कहाँ, उड़ीसा तक। उड़ीसा आए किस लिए, भगवान का चंदन लेने के लिए। देखो क्या प्रेम है भगवान के लिए। गोवर्धन से उड़ीसा तक माधवनपुरी चल कर आए भगवान के लिए, क्या चंदन लाने के लिए। अगर आपको बोला जाए गोवर्धन में जाओ जगन्नाथ पुरी चंदन लाने के लिए, आप कहोगे महाराज ट्रेन की टिकट मिलेगी क्या? अरे प्लेन की नहीं, तो ट्रेन की तो टिकट मिलेगी, नहीं तो मोटर मिलेगी, है ना। पर अगर आपको बोला जाए नहीं पैदल जाओ, तो आप में से कितने भक्त पैदल जाने को तैयार हो जाओ? कोई नहीं, कम से कम आप ईमानदार तो हो। मैंने सोचा सब बात उठाएंगे। तो माधवनपुरी पैदल चल के गए गोवर्धन से कहां तक। ये है भगवान का प्रेम। जब आप भगवान की खुशी के लिए हर प्रकार की कठिनाई सहने को तैयार हो। अगर हमने कई बार भक्त कहते हैं मैं सेवा करूंगा पर इस शर्त पर, मुझे ये सुविधा चाहिए, ये सुविधा चाहिए, ये सुविधा चाहिए, तो प्रभुपाद कहते थे फिर सेवा क्या है, तुम तो बिजनेस कर रहे हो, सेवा करूंगा अगर ये मिलेगा। सेवा होना चाहिए निष्काम भाव से, ये सबसे उत्तम सेवा। तो माधवनपुरी उड़ीसा की ओर चल के गए किस लिए, भगवान के लिए, क्या लाने के लिए, चंदन लाने के लिए। माधवनपुरी जब उड़ीसा पहुंचे पैदल गए, अंदाजा लगाओ कितने किलोमीटर रोज चल लेंगे, 30 किलोमीटर। जब वो उड़ीसा पहुंचे तो पहुंचे एक मंदिर में जो है राधा गोपीनाथ का मंदिर। ये बड़ा प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में राधा कृष्ण का विग्रह है और कहा जाता है ये जो राधा कृष्ण का विग्रह है ये पृथ्वी पर भगवान राम के समय से है, त्रेता युग से। एक समय एक दिन भगवान राम सीता को कह रहे थे कि द्वापर युग में मैंने प्रकट होना है इस रूप में कृष्ण राधा। उन्होंने खुद अपने हाथों से वो मूर्ति बनाई किसकी, राधा कृष्ण की। राधा गोपीनाथ। तो राधा गोपीनाथ मंदिर जो है ऐतिहासिक है और प्राचीन है। एक समय चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे भगवान के सामने, राधा गोपीनाथ के सामने। जब राधा गोपीनाथ का एक हार उनके गले में गिर गया, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। फिर महाप्रभु को याद आई एक कथा जो उनके गुरु ईश्वरपुरी ने सुनाई थी उन्हें, वो थी ये चंदन यात्रा की कथा। तो जब माननपुरी, आप सबको समझ आ रहा है, सुनाई दे रहा है? तो माननपुरी जब ब्रह्मणा में पहुंचे तो उन्हें याद आया कि इस मंदिर में एक खास खीर भगवान को रोज खिलाई जाती है और उस खीर का नाम था अमृत केली। अमृत जो कि खीर जो कि स्वर्ग से बनकर आ रही है, उस भगवान को हम इस्कॉन मंदिर में सुबह के समय खीर का भोग लगाते हैं। अगर आप सुबह मंगल आरती में आओ तो शायद आपको मिल जाए। और माधवपुरी के मन में भाव आया कि अगर मुझे ये खीर चखने का मौका मिल जाए तो मैं लौटकर मेरे गोपाल के लिए भी इसी प्रकार का खीर बनाऊंगा। जैसे कि हम भौतिक क्षेत्र में एक दूसरे की ज्ञान का लाभ उठाते हैं, आप अपने बच्चों को भेजते हो अमेरिका शिक्षा ग्रहण करने के लिए, आप फैक्ट्री खोल रहे हो तो आप जर्मनी जाते हो देखने के लिए वो उनकी क्या कला है जिसका आप लाभ उठा सको, है कि नहीं? तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हम एक दूसरे के ज्ञान का लाभ उठाते हैं। तो माधवपुरी सोच रहे थे अगर मुझे ये खीर चखने का मौका मिल जाए तो मैं अपने भगवान के लिए ऐसी खीर बनाऊंगा। विचार तो अच्छा था, है ना? पर माधवपुरी के मन में ये विचार प्रकट हुआ जबकि भगवान को भोग लग रहा था। नियम ये है जब आप भगवान के लिए भोग बना रहे हो आपको सोचना चाहिए ये भोग भगवान के लिए है, ये नहीं सोचो हाँ हमने जल्दी में भगवान को ऑफर करना है तो हमने खाना है स्पेगेटी और पिज़्ज़ा, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे में जब आप भोग तैयार कर रहे हो ये भाव होना चाहिए ये भोग बन रहा है भगवान की खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए। तो ये और जब भोग बन जाए उसके बाद हम भोग को उठाते हैं ऑल्टर से फिर बांटते हैं। पर माधवपुरी के मन में ये इच्छा प्रकट हुई जब भगवान को भोग लग रहा था तो माधवपुरी बड़े शर्मिंदा हो गए, भोग चखे बिना चले गए बाजार में अपना भजन करने के लिए। तो भगवान ने क्या किया, क्या किया भगवान ने? भगवान ने एक और लीला प्रकट की। भगवान ने एक खीर का प्याला चुरा कर पर्दे के पीछे रख दिया और पुजारी को कहा मैंने मेरे प्रिय भक्त की खुशी के लिए वो खीर का प्याला चुरा कर पर्दे के पीछे छुपा दिया। जैसे ये ऑल्टर में दरवाजा है, दरवाजा के पीछे पर्दा है, पर्दा के पीछे भगवान है ना? तो इसी प्रकार भगवान ने खीर का प्याला चुरा कर कहाँ रख दिया, पर्दे के पीछे। भगवान ने उस पुजारी को, उस राधा गोपीनाथ के पुजारी को कहा मैंने खीर का प्याला चुरा कर छुपाया है इस पर्दे के पीछे, तुम इस प्याले को, इस खीर के प्याले को लेकर बाजार में जाना, इस स्थान में जहाँ की माधवपुरी होगा, और उसे कहना ये प्याला खीर का है जो भगवान ने भेजा है। पुजारी को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान ने खीर का प्याला चुराया है। ये कभी संभव है? खीर का प्याला चुराया भगवान ने? पुजारी उठ रहे थे भगवान को जगाने के लिए। जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में 4:30 बजे मंगल आरती होती है, तो जो पुजारी हैं उन्हें 3:30 बजे आना पड़ता है स्नान करके। वो भगवान को मंत्रों से जगाते हैं, फिर भगवान को भोग लगाते हैं, फिर 4:30 बजे जाके आरती होती है। तो पुजारी को भगवान ने सपने में कहा, मैंने अपने शुद्ध भक्त की खुशी के लिए ये खीर का प्याला चुरा कर रखा है, उसे तुम लेकर चले जाओ बाजार में, जहाँ की मानंदपुरी नाम का भक्त होएगा। ये पुजारी जी गए, पहले तो पुजारी ने सपना विश्वास नहीं किया, भगवान कैसे उठाएंगे खीर का प्याला, भगवान कैसे चुराएंगे। पर फिर पुजारी जब गया उसे देगा, ओ सचमुच खीर का प्याला है। तो पुजारी सोचने लगे, ये मानंदपुरी कितना भाग्यवान व्यक्ति है, कौन है ये मानंदपुरी? उनको कुछ ज्ञान नहीं था कौन है, जिसकी खुशी के लिए भगवान ने एक खीर का प्याला चुराया। तो बाजार में गए पुजारी जी, यहाँ कोई मानंदपुरी नाम का व्यक्ति है? मानंदपुरी ने सुना कि उनका नाम पुकारा जा रहा है, हाँ मैं हूँ। तो पुजारी जी ने कहा, तुम जानते हो तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारी खुशी के लिए भगवान ने स्वयं खीर का प्याला चुराया। माधवपुरी को जब भी खीर मिली चखने के लिए, खुशी में वो नाचने लगे। वो डोना था उसको तोड़कर अपनी धोती में लपेट दिया, रोज चखते थे। पूरे शहर में खबर फैल गई कि माधवपुरी नाम का एक भक्त है, जिसकी खुशी के लिए भगवान ने एक खीर का प्याला चुराया है। तो जहाँ भी माधवपुरी जाते थे बहुत भीड़ हो जाती थी। जैसे कलयुग में जहाँ भी फिल्म स्टार जाते हैं, स्पोर्ट्स स्टार या कोई प्रसिद्ध खीर, ये हैं कलयुग के देवता, ये भीड़ हो जाती है। तो जहाँ भी माधवपुरी जाते थे भीड़ हो जाती थी। तो माधवपुरी को ये अच्छा नहीं लगा। हमें तो अच्छा लगता है जब 50 आदमी हमारी खुशामद करें ना, हमें तो अच्छा लगता है जब ज़्यादा लोग हमारे हमें सलाम करें। जैसे जो राजनीतिक नेता जब प्रवचन देते हैं, ट्रकों में लोगों को लाते हैं पैसे देकर, हाँ ये दिखाने के, देखो कितने 1,000 लोग सुन रहे हैं। तो ये लोग जो आते हैं जाए एक राजनीतिक नेता के बोलने के लिए, फिर दूसरा आदमी उनको पैसे देता है, वहाँ भी पहुँच जाते हैं। पर जो भक्त है उसे पसंद नहीं आता जब कोई उसकी प्रशंसा करे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, अगर कोई आपकी तारीफ करे तो आपको घबरा जाना चाहिए, कोई तारीफ करे तो। तो माधवपुरी को अच्छा नहीं लगा कि जहाँ भी हो जाते थे भीड़ हो जाती थी लोगों की, लोग कहते थे ये है वो भाग्यवान व्यक्ति जिसकी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया। फिर माधवपुरी पहुंचे जगन्नाथपुरी, वो निकले थे गोवर्धन से क्या करने के लिए, हाँ। तो जब वो जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंचे, वहाँ उन्हें 80 पाउंड चंदन दिया। साथ में जगन्नाथपुरी मंदिर के अधिकारियों ने पत्र दिया ये दिखाने के लिए कि ये चंदन जो है ये दान में दिया जा रहा है। हमारे भक्त भी जब विदेश से आते हैं भारत में धोती कुर्ता खरीदते हैं, तो निकलते को हम लोग से छुट्टी ले लेते हैं कि हम धोती कुर्ता दान में दे रहे हैं। तो माधवपुरी जब वापस लौट के आ रहे थे तो फिर ये रुके ये यमुना मंदिर में एक रात के लिए। जब वो एक रात के लिए रुके तो भगवान ने फिर उन्हें सपने में आदेश दिया। भगवान ने कहा, माधवपुरी तुम परीक्षा में सफल हो गए हो। क्या थी परीक्षा? भगवान ने उन्हें आदेश दिया, चंदन लाने जाओ। और वो गए गोवर्धन से कहां तक? उड़ीसा तक। भगवान ने कहा, गोपाल विग्रह ने कहा, मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं, तो ये चंदन तुम गोपीनाथ के में इस्तेमाल कर लो, गोवर्धन मुझे नहीं चाहिए। हमारे आचार्यों ने कहा है कि उन दिनों में क्योंकि मुसलमान अधिकारी थे और मुसलमान चुंगी वाले थे, भगवान तो प्रसन्न हो गए थे कि माधवपुरी ने इतनी लंबी यात्रा की चंदन उठाने के लिए। भगवान इतने प्रसन्न थे, भगवान चाहते नहीं थे कि उनके प्रसिद्ध भक्त माधवपुरी को मुसलमान चुंगी वाले तंग करें। तो भगवान ने क्या कहा, मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं, तो मैं चंदन गोपीनाथ को ही लगा दो, वो मेरे बराबर है। तो माधवेंद्रपुरी 21 दिनों के लिए रहे यमुना में और उनके निर्देशन में पुजारियों ने भगवान के चेहरे को चंदन से ढका और इस प्रकार ये चंदन यात्रा का उत्सव शुरू हुआ। तो आपके इस कृष्णा वाला मंदिर में भी चंदन यात्रा मनाई जा रही है। तो आप सब चंदन को घिसने में क्या करो, सहयोग दो। जब आप चंदन को घिसोगे तो अपने हृदय को घिसने के बराबर है। जैसे हम जब मंदिर को साफ करते हैं तो मंदिर की मैल को दूर करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत जी ने कहा है ये है हृदय को साफ करने के बराबर। तो ये चंदन यात्रा का उत्सव आरंभ हुआ था माधवपुरी के द्वारा। और चंदन यात्रा वाले दिन वृंदावन धाम में सारे जो प्रसिद्ध मंदिर हैं सब सजोए होते हैं। जैसे मैंने कहा, खास करके कृष्ण बलराम मंदिर में वृंदावन में कृष्ण बलराम को पूरे शरीर को सजाया जाता है, किससे? चंदन के साथ। तो इसी प्रकार इस्कॉन के मंदिरों में भी चंदन हम लगाते हैं, कितने 21 दिनों के। तो आप सबसे निवेदन है सब चंदन घसीटे में घिसने में मदद कीजिएगा। कौन कौन करेगा मदद? ऑल दीज पीपल गोइंग टू हेल्प विद द चंदन। तो आई थिंक यू हैव टू बाय। तो ये चंदन से आपके कृष्ण बलराम को भी लगाया जाएगा। तो इस वक्त भगवान ने माधवपुरी की भी परीक्षा ली है ना। पहले उन्हें कहा मुझे निकालो। और माधवपुरी की कथा में आप देखते हो कि माधवपुरी को भगवान ने 3 दफा सपने में आदेश दिया। तो आप कह सकोगे बस हमें भी जो सपने में आदेश मिलेगा वही हम करेंगे। तो जब आप आत्मज्ञानी बन जाओगे, जब भगवान आपको सपने में आदेश दे सकते हैं। तो जब तक आत्मज्ञानी नहीं बनो, जब तक सपने में ज्यादा विश्वास नहीं रखो। तो माधवपुरी की कथा में हम ये भी देखते हैं भगवान की खुशी के लिए किस प्रकार उन्होंने यात्रा की गोवर्धन से कहा उड़ीसा तक। तो चैतन्य महाप्रभु जी उनके भक्तों की अनेक लीलाएं हैं। चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी को दीक्षा शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने खास करके 5 महत्वपूर्ण अंगों पर बल दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा साधु संग, हमें इस प्रकार की योजना करनी चाहिए कि हम सदा साधु संगत में रहें। जैसे कि इस्कॉन के अनेक कार्यक्रम होते हैं, नामहत भक्ति वृक्षा, और ये रविवार का प्रोग्राम प्रभुपाद जी ने खुद शुरू किया था इस भावना से कि जो लोग नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं इत्यादि, वो रविवार को आकर मंदिर में भगवान का दर्शन लें, भक्तों के संग में बैठकर कीर्तन करें, भक्तों के संग में बैठकर उपदेश सुनें। तो पहला आदेश था साधु संग। जब साधु संग में रहोगे तो नाम कीर्तन हरि नाम की महिमा का ज्ञान मिलेगा। साधुओं का फर्ज क्या है? भगवान का असली संदेश आगे पहुंचाना। और शास्त्र में क्या लिखा है? कले दोषे नरे राजन। एक राजा कलयुग में दोष ही दोष है, और एक गुण है क्या? कृष्णा का कीर्तन। तो दूसरा है नाम कीर्तन, तीसरा है श्रीमद् भगवतम का श्रवणम। श्रीमद् भगवतम को ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो। चौथा है क्या? हाँ, आचार्य विग्रह की सेवा करो श्रद्धा के साथ, श्रद्धा और प्रेम के साथ। और पांचवा है धाम में रहो। धाम में तो आप लोग रह रही हो। जैसे मैंने कहा, दीदी इसको बंद नहीं कर रहे अभी, मैंने अभी बंद कर दिया। जैसे मैंने कहा आपको जयपुर भी धाम है, तो हमारे सिद्धांत में अनेक भगवान की लीलाएं हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये पांच अंग बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो हरि नाम का उच्चारण ये हम सब भक्तों का सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। तो आप सब जो यहाँ पधारे हो, आपसे निवेदन है कि हरि नाम का जाप कीजिए, भगवतम पढ़िए, साधु संग में रहिए, और इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाइए। ध्यान पूर्वक हरि नाम का जाप। जय श्री कृष्ण। आपके मंदिर में बहुत ही खूबसूरत कृष्ण बालराम के विग्रह है, और पापा जी कहते थे बालराम का मतलब है शक्ति बल, और राम मतलब जो आनंद भी देता है, और भगवान राम भी। तो आपके मंदिर में श्री कृष्ण बालराम का विग्रह है, तो श्रद्धा से प्रयास करेंगे तो भगवान कमियों को दूर कर देंगे। भगवान कहते हैं गीता में, जो श्रद्धा से मेरी सेवा करता है उसमें कुछ कमी भी हो उसे मैं दूर करता हूँ। तो जैसे हमने आपको संक्षेप में आनंदपुरी की कथा सुनाई, अगर आप पूरी कथा पढ़ना चाहते हो तो चैतन्य चरितमृत में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार अनेक और कथाएं हैं। चैतन्य चरितमृत है आपके पास? कितने भक्तों के पास आए थे? पढ़ते भी हो? इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएं हैं जिनका हमें स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? में थोड़ा समय प्रश्नों के लिए छोड़ने को तैयार हूँ। एनी क्वेश्चंस? सो मेनी पीपल रेज देयर हैंड्स, दे वांट टू रब द चंदन। यू विल हैव टू गेट सेवरल ऑफ दिस मशीन। तो कितने भक्त तैयार हैं? पंचरात्न प्रभु आप लोगों को देख लें, मैं तो चले जाऊंगा। कितने भक्त तैयार हैं चंदन घिसने के लिए? ऊंचा हाथ। और देयर ऑल रेडी? यस। एनी क्वेश्चंस? यस। हाँ, I can't speculate, but Madhavendra Puri did it for 3 weeks, so we all follow his example. It's not the hottest days, because मई जून जुलाई विल बी हॉटर देन मे, है ना। हम 21 दिन के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि महानंद पुरी ने 21 दिन के लिए किया, और महानंद पुरी खुद जाकर देखते थे कि पुजारी चंदन ठीक लगा रहे हैं कि नहीं। तो 21 दिन के लिए आप सब रोज आना कृष्ण बलराम का दर्शन लेने के लिए, क्योंकि भगवान को सजे होंगे चंदन के साथ। और कोई प्रश्न? नो मोर क्वेश्चन। No questions? Yes.
मार्ग से हमें नीचे धकेलने वाली जो हमारी भक्ति में प्रगति को रोकता है, तो उसका ये सब चीजों का मूल कारण क्या है?
आप हो इस वक्त माया के राज्य में, आप भक्ति में जुड़ना चाहते हो तो माया आकर कहती है जल्दी क्या है, अभी तो भाई लंबी आयु है, मेरे साथ घूमो पहले थोड़ी, है ना। तो माया का कर फर्ज है आपको विचलित करना। तो भगवान देख रहे हैं आप विचलित होते हो या नहीं। अगर आप ध्यान से जप करो, शास्त्र पढ़ो, साधु संग में रहो, तो आपकी बुद्धि हमेशा सावधान रहेगी, समझे ना। जब आप सावधान रहोगे तो विचलित होने की गुंजाइश नहीं। पर अगर हम माला के जाप में आलसी हो जाएं, शास्त्र नहीं पढ़ें और भक्तों की संगत में ज्यादा रहें, तो विचलित होना ज्यादा सरल हो जाता है। इसलिए हम सबके लिए, चाहे आप ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो, तो ये जो भक्ति की विधियाँ हैं, ये जो विधियाँ हैं ये प्रभुपाद जी ने नहीं दी, ये भगवान ने दी है। इस्कॉन परंपरा में जो भी शिक्षा आपको दी जा रही है ये आरंभ हुई थी भगवान से, फिर ब्रह्म नारद द्वारा परंपरा से आ रही है। और भगवान की शिक्षा में कोई कमी नहीं है। तो ये हरि नाम का जाप इत्यादि ये सब उपदेश भगवान का है, ठीक है। और कोई? Should I stop now? Can somebody announce tomorrow's program? Question? Okay, quick, जल्दी। ध्यान से जप कैसे करें? हाँ, आपके 16 माला करने के लिए 1.5 से 2 घंटे हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे में से 1.5-2 घंटे अब और कुछ काम मत करो, टेलीफोन बंद कर दो, घड़ी को उठाकर फेंक दो, और कुछ नहीं, तो घड़ी को देखोगे हर 5 मिनट बाद, और आपसे हम माला का जाप करो बस। अगर आप थोड़े समय के लिए करो आपका मन स्थिर हो जाएगा। तो ये नहीं, हाँ जाप भी कर रहे हैं, टेलीफोन में भी बात कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, आप कहोगे ध्यानपूर्वक जाप का ये मतलब नहीं कि आपका मन नहीं भटकेगा। मन भटकेगा और भटकने दो, पर ये आपके हाथ में है कि आप और कोई कार्य नहीं करो, है ना। तो इसलिए जब जाप करने बैठो 1.5-2 घंटा खाली कहो भगवान ही आपका समय है, अब मैंने केवल आपका गुणगान करना है। प्रयास करोगे तो संभव हो पाएगा। यस,
हाँ
Do we need a particular dress? Like a policeman, he gets identified by his uniform. No, you can wear any clothes, no problem.
The preachings you are talking about, it just stayed in my mind, something
I'm sorry, I didn't understand what he said.
Preaching, we are talking about, even you are talking about. So I had a very simple question, and that says, is it subjective? Like, it has to be subjective at each and every point. Preaching, because it's just a state of mind which is, you know, we won't follow.
Anyway, our philosophy, we don't listen to the mind. We can talk later. Or koi prashan?
Raj, I have a question.
Yeah.
जब जप करते हो तो नींद आ जाती है
तो थोड़ा क्योंकि प्रसाद खाते को नींद आती है किसको अभी आप सब प्रसाद खाने जाओगे नींद आएगी क्योंकि प्रसाद में हमारी रुचि है जप करने में रुचि कम है पर चिंता मत करो जप करते जाओ रुचि खुद ही बढ़ जाएगी अपने साथ एक वाटर स्प्रे रख लिया करो जब नींद आ रही तो हमारे कई मंदिरों में एक दो इंस्पेक्टर खड़े रहते हैं वाटर स्प्रे के साथ ऐसे कोई सोता है उसकी आंख में ओके यस
महाराज मेनी डिवोटीज आर आस्किंग If you're going to go Vindiji tomorrow, what time you might go, they may also like
oh,
to
Oh, I can't give a time.
Can't give a time.
No, because
yeah.
you know, maybe in the evening I'll go. I don't know. Because of the initiation ceremony, 9 o'clock, the committee members are coming 9:30.
Yeah.
So, okay. So, sabne chandan ghisna hai. Sabne haath uthaya tha. I think you'll need a lot of chandan now. You'll need a lot of sandalwood. You want to tell them about tomorrow's initiation program?
Yeah, he'll do that.
Okay.
10:30.
Okay. So announce. You want to do it earlier? 10:30 is okay. It's okay.
10:30 is fine.
Okay. Announce.